ओम शांति। आज की वरदान की विषय में कुछ चर्चा करना है। और वरदान की जो बात आती है तो मुझे एक कहानी याद आता है कि दुनिया में भी बड़े अपने छोटे को वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे ही एक बारी एक बड़े ने एक छोटे को वरदान दिए। जैसे ही उनकी प्राण तन से निकलने ही वाला था तो अपने छोटे पोता को दादा ने आशीर्वाद दिया कि मेरे पोता, देखो हमारी आर्थिक अवस्था बहुत कमजोर हुआ तो मेरा अच्छी उपचार नहीं हो पाया, देखो कितनी बीमारी से तड़पना पड़ा, तो तुम क्या है डॉक्टर बन जाना, डॉक्टर भाव करके वरदान दिया और वो चला गया। वरदान तो मिल गई और उनका आर्थिक अवस्था कमजोर भी था तो वरदान देके वो अपनी शरीर छोड़ लिया। फिर उसको पोता को भी उतना कुछ नॉलेज नहीं था और आर्थिक रीति से विपन्न परिवार था तो वरदान तो मिल गया। उसको स्मृति था कि दादा ने बोला है कि मुझे डॉक्टर बनना है, अब कैसे बनना है कि किस तरह से बनेगा कुछ पता ही नहीं। तो वर्ष बीतते गए, 20-22 साल का हो गया वो, फिर भी डॉक्टर तो बना ही नहीं, कारण क्या हुआ। तो फिर एक दिन वो पंडित से मिलने गया, बोला कि मेरे को दादा ने बोला था डॉक्टर बनना पर मैं बना ही नहीं क्या हो गया, ये कारण क्या है। तो फिर पंडित ने पूछे, तुमको डॉक्टर बनना था, आशीर्वाद भी मिला, तो तुमने क्या किया, क्या क्या कर्म किया तुमने डॉक्टर बनने के लिए। उसने बोला, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, अभी हमारी तो आर्थिक अवस्था भी कमजोर था, मैं तो अपनी खेती में हल चलाता रहा, हल चलाते ही मेरी जिंदगी यहाँ तक आई। बोला, अरे तुमने हल चलाया तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगे, डॉक्टर बनना था तो फिर तुमको पढ़ाई करना था, मेहनत करना था। उसने बोला, पैसे नहीं था, पैसे भी तुमको मिल जाता था, मिल सकता था, अगर तुम अच्छी पढ़ाई करता तो तुमको स्कॉलरशिप भी मिल सकता था, तो तुमने वो तो कुछ नहीं किया तो तुम डॉक्टर कैसे बन पाओगे, नहीं बन पाया, तुम्हारी दादा का वरदान व्यर्थ नहीं था, समर्थ था, फिर भी तुम नहीं बन पाया, तुम्हारी समझ में वो नहीं आया, वो वरदान कैसे सार्थक करना है। तो बाबा हमें यहाँ क्या करते हैं, हर रोज वरदान देते हैं, बनाया बाबा हमें रोज वरदान देते हैं, हर दिन वरदान देते हैं, बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा, बच्चे बाप समान बाबा, बीज रूप बाबा। तो आज बाबा ने बोला है कि निमित्त बनो और क्या है सर्व लगाव से तुम मुक्त बनना, आज बाबा ने वरदान दिया है। यहाँ बाबा वरदान देते हैं तो उस वरदान को कैसे जीवन में वरदानी मूर्त कैसे बनना है वो भी बाबा युक्ति भी बताते हैं। तो ऐसे ही युक्ति बाबा ने आज बताया है कि एक बाप और दूसरा न कोई, इस स्मृति से फिर निमित्त बनकर तुम सेवा करोगे तो क्या होगा, सर्व लगाव से तुम मुक्त बनोगे। सर्व लगाव से मुक्त होने की आज हम कुछ चर्चा करेंगे, लगाव कितना होता है, क्या क्या चीजों में हो सकता है, इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। बाबा ने बोला है कि जिस चीज में लगाव होगा तो हमारी बुद्धि उसमें सोता जाएगा, बुद्धि जाएगा, मन भटकेगा, उसके बारे में जानने की चिंता होगा, क्या है, कैसा है, किस तरह का है। अब जैसे कोई व्यक्ति से लगाव हो ही गया तो क्या होगा, ये क्या खाता होगा, ये किस तरह से रहता होगा, कितना सोता होगा, कितना क्या क्या करता होगा, ये सब चिंतन चलने लग जाता है। तो ये लगाव शास्त्र में ही इसको नेगेटिव रीति से ही देखा गया है, लगाव से क्या होगा, नुकसान ही होगा। शुक्राचार्य ने अपने शुक्र नीति में भी इसको वर्णन किया गया है कि लगाव जो है इससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, इससे नुकसान होगा। तो उन्होंने वहाँ 6 प्रकार की लगाव का वर्णन किया है और मैंने भी ज्ञान रीति से भी सभी तरफ से देखकर 6 प्रकार का ही लगाव का लिस्ट बनाया हूँ। लगाव क्या है, लगना प्लस आए, मतलब ये लगाव, लगना प्लस आय इज इक्वल टू लगाव होता है। हमारे में कुछ चीज लगने आ जाता है, बाहरी चीज है, जो लगने से क्या होगा, हमारी स्थिति अभी धीरे धीरे डामाडोल होता जाएगा। मोह जैसा ही है, पर मोह एक दूसरों से होगा, पर इसमें कई सारी चीजों में, व्यक्ति वस्तु वैभव में ये हो सकता है। तो अभी हम लगाव की पॉइंट निकाल ले है, उसमें से मैंने एक पॉइंट निकाला है कि लगाव खुद में और शरीर की रिश्ते नाते, जो जितने भी है माँ बाप भाई बहने प्रेमी प्रेमिका ये वो जो भी होते हैं, इनों से हो सकता है। अपने में कैसे लगाव होता है, अपने जो जवानी है उसकी चेहरा अपने रूप रंग छाट काट उसको अच्छा बनाऊं, इसमें लगे पड़े रहते हैं दुनियादारी लोग। अब ब्राह्मणों में भी किसी में ये संस्कार हो सकता है, तो ये क्या होगा अपने को, ये हमेशा ये जवानी रहेगा नहीं, एक दिन बूढ़ा होएगा, दांत टूटेगा, बाल सफेद होगा, ये हमेशा रहने वाली तो चीज है नहीं, फिर भी हम इसमें लग जाते हैं, इसको अच्छा बनाने के लिए, सुंदरता निकालने के लिए, बड़ी बिल्डिंग करने के लिए लग जाते हैं, बड़ी बिल्डर बनने के लिए। तो ये सब इससे क्या होगा, हमें नुकसानी होगा। और दूसरी चीज, माँ बाप है, हमारी भाई बहने है, वो हमें हमेशा साथ देने वाले तो है ही नहीं, एक दिन तो छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। हमारी साया हमको साथ नहीं देता, जब तक रोशनी है तो हमारी साया होता है साथ में, जैसे ही रोशनी खत्म सूरज डूब गया छाया भी छोड़ के चला गया। तो ये जो हमारे शरीर की रिश्ते नाते हैं ये भी हमको छोड़ने ही वाले हैं, तो इससे भी हमारी लगाव होने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी इस प्रकार की जो लगाव है अपने ऊपर और शरीर की रिश्ते नाते, इसको काटने की भी एक साधन क्या है, एक बाप दूसरा न कोई भी है। एक बाप से ही अगर हम बुद्धि योग लगाते हैं तो हम इस लगाव से स्वतः ही मुक्त हो ही जाएंगे। योग की पराकाष्ठा, योग की पराकाष्ठा क्या है, एक बाप दूसरा न कोई। पराकाष्ठा मतलब क्या है, जैसे हम माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, उसके बाद दूसरा कोई पर्वत नहीं उतना ऊंचा, उससे भी ऊंचाई में जाने की कोई जरूरत नहीं। तो जैसे एक बाप है तो बाप में पूरा संसार है, सब कुछ समाया हुआ है, ये योग की सबसे ऊंची स्टेज है। हर चीजों में बाप को ही हम देखे, हर कोई बात हो रहा है बाबा को उसमें आगे लाए, तो हम क्या होगा, अपनी देह की और ये सारी देह की संबंधी जो भी है इनों से हम मुक्त हो सकते हैं। हम इस देह में, ये देह हमको अमानत में मिला है, हम यहाँ मेहमान होके बैठे हैं, हमको फरिश्ता होना है इसी में रहते हुए, और एक रथ में हम सवार है, जैसे ब्रह्मा बाबा रथ में सवार होते थे, अपने को अनुभव करते थे, और वैसे ही जैसे शिव बाबा शरीर में आते हैं, ज्ञान सुनाते और चले जाते हैं, इसी भाव में हम रहेंगे तो अपने शरीर से तो हम डिटैच हो ही जाएंगे, साथ साथ में हमको ज्ञान इतनी सारी मिली गया है कि नष्टो मोहा होना है, कोई हमारे साथ में रहने वाला नहीं है, इस सब भावना से हम अपने रिश्ते नाते से भी छुटकारा पा सकते हैं, उनों की लगाव से भी। और दूसरी प्रकार की लगाव है धन से रिलेटेड, मनी धन से रिलेटेड है। धन से रिलेटेड जो लगाव है उस लगाव में व्यक्ति भी आ सकता है, वस्तु भी आ सकता है, और सेवा स्थान भी आ सकता है, कई सारी चीज आ सकता है। अभी धन कमाना है तो धन कमाने के लिए क्या होगा, हमको बिजनेस कर रहा है तो व्यापार बिजनेस में ध्यान लगाना पड़ेगा, मेरी ये सामान बिक नहीं रही है, ये सामान लेके आया वेस्ट गया, ये ऐसा हुआ, इसमें बुद्धि जाएगा। और दूसरा फिर ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो वो ऑफिस का बॉस कोई अच्छा बॉस है मेरा ये, तो बॉस में अपनी लगाव होगा, ऑफिस में लगाव होगा, इतनी अच्छी ऑफिस मुझे दूसरा मिलेगा ही नहीं, तो मुझे यहाँ किसी भी तरह से अच्छे से करना है, तो वो अच्छे से तो करना है पर धीरे धीरे वो लगाव बनेगा। लगाव बनने से क्या होगा, बुद्धि उसमें ही लगेगा, फिर हमें कुछ भी छोटी मोटी कोई बात हुई तो फिर हमारी स्थिति उसमें से बिगड़ जाएगा, भटक जाएगा। और दूसरी चीज है, जैसे कृषक है, किसान है, उसको क्या है, बैल से अपनी जमीन को जोतना है, या मिल्क सेलर है, दूध बेचने वाला है, उसको गाय पाला है, तो गाय में उसकी क्या होगा, मुख जाएगा, गाय नहीं हुआ, गाय मर गया तो फिर क्या होगा, धन की स्रोत सब खत्म हो जाएंगे, कैसे धीर दिएंगे, ध्यान देना पड़ेगा, पर क्या होगा उसमें ज्यादा लगाव में नहीं जाना है, हर चीजों को जी ज्यादा लगा माना ऐसा होगा कि वो गाय की ही ओर ध्यान होगा उसको, कुछ भी होगा उसी गाय में ही वो बुद्धि लगाएगा, खाना पीना सब कुछ छोड़ करके भी वही गाय को बचाना है, वही गाय को ऊपर ही उसको ध्यान रखना है, इस तरह का अपनी जॉब को ध्यान देना है। बाबा ने ऐसा बोला नहीं कि तुम लापरवाही करो काम बिगाड़ो, ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे जॉब मिल गई है ठीक है तो अभी ये क्या होगा, एक होता है निस्वार्थ भाव से सेवा, ठीक है मुझे ये सेवा करना है जो मिला है, अपने को बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करना है, पर क्या है मुझे उसी में ही लगा रहा हूँ, मैं उसी में ही लगा रहा हूँ, ज्ञान युग सब छोड़ दूँ और कोई किसी को भी उसमें आने न दूँ, मैं ही करता रहूँ, ये भाव क्या होगा, हमको घाटा ही होगा ना। तो इस तरह से जो धन कमाने की जो बातें है, धन की स्रोत का जो चीजें है, ये भी हमको खींचते है, तो इसमें भी अपने को ये सारी चीजें जो भी है धन संपत्ति जो मिलना होगा हमें मिल ही जाएगा, हमने जितने अपनी पार्ट में लेके आया है वो तो हमको मिलना ही है, प्रभु अमानत है तो फिर सबसे उच्चते उच्च जो पिता परमात्मा है वो दाता है, वो हमें किसी भी तरह से देंगे, भूखा नहीं रखेंगे, तो धन की खातिर भी हमको उतना लगाव रखने की जरूरत नहीं है। और तीसरे नंबर का होता है कि एक पद पोजिशन का लगाव होता है, जैसे कोई ऑफिस में चला गया उसको ऑफिस में एक पोस्ट मिल गई, जैसे सामान्य पोस्ट मिल गई, उसके बाद उसकी मन में क्या होता है अभी इस पोस्ट को बढ़ाना है, अब इस पोस्ट को बढ़ाना है, किसी भी तरह से मेरे को तरक्की करना है, चाहे जितना भी मुझे कुछ भी करना पड़े, जितना भी चापलूसी करना पड़े, किसी की पैर पड़ना पड़े, फिर भी मेरे को आगे ही बढ़ना है, इस प्रकार की लगाव भी क्या होगा उसकी अपनी स्वमान की जीवन नहीं होगा, दूसरों की खातिर दूसरों को हाथ जोड़ के जो मिली हुई पद प्रतिष्ठा है वो एक दिन हो सकता है गुम भी जाए, कोई बॉस से अच्छे से रिलेशन बना के हम अगर पोस्ट ले भी ले तो हम लायक नहीं है तो दूसरा बॉस आएगा तो फिर क्या होगा वहां से फिर निकाल देगा, तो क्या फायदा हुआ, तो इस प्रकार की लगाव भी हमको नहीं होना चाहिए। और चौथा नंबर का है सेवा, बाबा ने विशेष सेवा में ही अटेंशन दिया है और सेवा से रिलेटेड जो लगाव है उसकी ही चर्चा है विशेष इसमें भी, तो सेवा में ही अभी हम ब्राह्मणों को लगाव होता है, तो मैं सेवा अच्छे से करूं, अच्छा तो करना है पर उसमें ऐसी लगाव आ जाता है कि मेरी जो सेवा है इसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करनी है, मेरे को करना मतलब मेरे को करना है, तो मेरे को ऊंचा बनना है इसमें, विशेष करना है, इस चक्कर में क्या हो जाता है बाप भूल जाता है, बाप ने सेवा दिए है सेवा के लिए स्थान दिए है वो भी हम भूल जाते हैं, तो फिर क्या होगा उसमें मैंपन आने लग जाएगा, तो जो परमात्मा बाप ने दी हुई सेवा है वो अपने अपने को बनाने लग जाते हैं, अमानत में ख्यानत करने लग जाते है, तो उस सेवा से क्या होगा डिसर्विस होने लग जाएगा, तो इसलिए बाबा ने मुझे ये सेवा स्थान दिए है तो मुझे इसमें निमित्त होकर इस सेवा को आगे बढ़ाना है। तो बाहरी दुनिया में सेवा कैसा होता है, एक गुरु होता है धार्मिक गुरु तो सबसे ऊंचा होता है, वो सबको नीचे रखता है, सबको नीचे रखता है, मैं सबसे ऊंचा हूँ आप लोग नीचे रहो, सब चेला चपेटा सब नीचे होते है, और वहाँ की सेवा क्या होता है बर्तन साफ करना और झाड़ू पोछा लगाना, इसके अलावा क्या होता है ज्ञान देने की कुछ तो है ही नहीं, यहाँ वो भी करना है और बाबा ने बोला है कि तुमको ज्ञान भी देना है और आत्मा को सेवा करना है। बाहरी दुनिया में क्या है, बाहरी दुनिया में ऐसा है कि वहाँ पर आत्मिक सेवा तो होता नहीं है, कहीं बाढ़ जाता है कहीं कुछ नेचुरल कैलिमिटीज होता है या कुछ होता है, तो वहाँ पर क्या होता उन आत्माओं को नहीं उस शरीर को सेवा होता है बाहर, पर यहाँ बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ आत्मा को सेवा करना है, तो आत्मिक सेवा में रहने के लिए बाबा ने हमें एक ज्ञान की भी सेवा दी है, तो ये ज्ञान की जो सेवा मिले है हमको तो इस ज्ञान को सेवा में क्या है अभिमान नहीं आना चाहिए, अभी बर्तन मांजना झाड़ू पोछा करना ये पढ़ रहा है वो ज्ञान सुना रहा है बाबा ने बोला ये सभी को समान सेवा दिया है, भले तुम कोई भी काम करो पर तुम ज्ञान सुनाओ, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ और ये सेवा करते रहो, बाबा ने बोले है। तो इसमें हमको निमित्त भाव लाना ही पड़ता है। तो ये ज्ञान की जो सेवा है इसमें बाबा ने बोला है कि ज्ञान का भी एक पराकाष्ठा होता है। पराकाष्ठा मतलब ऊंची अवस्था। ऊंची अवस्था क्या होगा? ऐसी ऊंची अवस्था होगा जिसमें निंदा स्तुति करने वाला जो भी आए सम्मुख में उसको ज्ञान देने की क्षमता हो। ये नहीं कि ये मेरा इंसल्ट करता है, हर हमेशा मुझे कुछ न कुछ बोल रहा है, अब ये आज ये ज्ञान सुनने आया मेरे से, मैं इसको कैसे ज्ञान दूं। तो ये ज्ञान देने की जो क्षमता है उससे हम वंचित न हो जाए, इतनी ऊंची स्टेज हमको। और ये इसमें निमित्त जो भाव है ये सेवा की, तो इसमें बाबा ने बोला है कि कहीं भी जाओ पर ये सेवा तुमको करना है। ये नहीं कि मैं यहाँ रहूं तो सेवा कर सकता हूँ, मेरे को दूसरी जगह में भेज दिया तो मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा, ये तो होगा नहीं मेरे से, ये भाव भी नहीं होना चाहिए। और मुझे खुद को ही अनुभव है कि जब मैं इधर आ रहा था वो मेरे लिए सेकेंड की परीक्षा था। दीदी ने बोला कि हॉस्पिटल में एक भाई जा रहा है, उसको आज जाना है, क्या तुम वहां जाओगे? मैंने बोला कुछ भी सोचा नहीं, हाँ जाऊंगा। वो शाम को ही निकलना था उनको और मैं सुबह 10 बजे हमारी बात हुआ निकलेंगे। कुछ भी नहीं था मेरे पास, कोई तैयारी नहीं, कोई माँ बाप से मिला भी नहीं, किससे भी नहीं मिला। वैसे भी मैं गीता पाठशाला में ही रहता था, 3 साल तो उधर ही मैंने सेवा किया था, कुछ भी नहीं। और मुझे मधुबन में आगे क्या करना है, मैं वहां जाके रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, भाषा मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, कुछ भी नहीं पता। फिर भी मैंने बोला हाँ ठीक है मैं जाऊंगा। तो बाबा ने जो बोले थे ना, बाबा जो बोलते हैं ना, तुमको सेकेंड में ही परीक्षा आता है और तुमको उस परीक्षा को पार करना है। कोई काल आता है तो थोड़े ही बोलता है कि मैं तुमको कल लेके जाऊंगा तैयार रहना, ऐसा तो बोलेगा ही नहीं। काल आता है तो सेकेंड में ही उठा लेगा, तो एवर रेडी। तो सेवा में भी ऐसे ही एवर रेडी होना पड़ता है। तो वो हाँ, एक हिसाब से वो मेरे लिए काल ही था, एक जगह से मर के दूसरे जगह में फिर से जगना था। तो 10 साल तक अभी हम ऐसे ही यहाँ पर रह रहे हैं। और हम सोचते हैं कि दूसरी जगह में जाएंगे तो क्या होगा, वहां जाके रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, वहां पर हमारी अवस्था क्या होगा, ये सब पिता परमात्मा जो है उससे हम बुद्धि योग जितना अच्छा लगाएंगे, जितना उनमें जितना हमारी उनमें लगाव होगा, पिता परमात्मा में जितना हमारी बुद्धि होगी ध्यान होगी, हमारी सेवा कोई बिगड़ेगी नहीं। इसलिए बाबा ने बोला है कि तुम निमित्त बन के चलते चलो, मैं चलाऊंगा तुमको। जब हम कोर्स देते थे जब शुरू में सेंटर में, वहां भी कैसे अद्भुत लोग आते थे, शराब वराब पीके भी आते थे उन लोग जिसको हम बाहर कोर्स कराते थे, पर उन लोगों ने कभी भी डिबेट करके हमें उसकी ऊपर हमारे ऊपर वो नहीं हुआ कभी भी। वो मान गया कि हाँ परमात्मा तो होते ही है और आप लोगों में ये ताकत है तो ये कर रहे, हम छोड़ेंगे बोल के जाते थे, पर छोड़ते तो नहीं थे। उन लोगों का जो भी करना था वो तो चलता ही रहता था। बाकी निमित्त भाव से हम रहेंगे तो हमें बाबा मदद जरूर करेंगे। और ये सेवा जो है, सेवा में ही हमको लगाव जो आता है यही विघ्न रूप बन जाता है, तो फिर क्या होगा, डिसर्विस होगा। अभी यही सेवा में ही बाबा ने विशेष अटेंशन भी दिए हुए है। और दूसरा इससे आगे पांचवा नंबर का होता है कि भौतिक पदार्थ और साइंस की साधन जो जितने भी है इसमें लगाव होता है। अभी विशेष करके आज की जमाना में क्या है, फैन, ये हमारी टाइम में तो था ही नहीं। हम जब छोटे थे 10 क्लास तक हम जब पढ़े थे लाइट भी नहीं था, हम वो छोटी सी दीप जला के पढ़ते थे। जो भी हो, बाकी जो भी हो, बहुत पहले तो नहीं था ना, ये तो अभी अभी आया, 100 साल लगभग हुआ होगा, 100 साल लगभग हुआ होगा ये सब चीज आए। उससे पहले भी तो हम जी रहे थे, हमको फैन लगाने की जरूरत ही नहीं था, हम बिगर फैन भी जी सकते थे। अभी क्या है, हमको फैन लगाना पड़ता है, एसी में रहना पड़ता है। अब मोबाइल था ही नहीं तो भी तो चल रहा था, अभी मोबाइल है कि नहीं, कहाँ गया, ढूंढना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है मोबाइल कहाँ गया आज मेरा, कहीं खो तो नहीं गया, इतनी इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये क्या होगा, ये साधन क्या होगा, साधना में विघ्न डालेगा। अभी पहले बाबा के जमाने में गाड़ी ही नहीं था बोलते, गाड़ी था ही नहीं। अभी तो हर एक के पास में गाड़ी, लगभग हर एक के पास में गाड़ी, कोई ना कोई छोटी मोटी। तो क्या हुआ, सेवा तो इससे चौगुना बढ़ रहा है, पर एक दिन ये सारी चीज फेल भी होना है। बाबा बोले कि सारी चीज फेल होगा तो तुमको इसमें लगना नहीं है, इसमें पुष्पक विमान जो आएंगे वो तो आएंगे, हाँ वो तो हुए, लाइट ही चली जाएगी तो फिर सबकी फेल हो ही जाएगा, तकलीफ तो होगा नहीं है। फिर भी बात ये है, बाकी जो है इससे क्या होगा, इसमें लगाव होने से अंतिम समय में हमारी बुद्धि भटकेगी। फिर लाइट नहीं है, फैन नहीं चल रहा है, कैसी अब हम चले। वो उषा दीदी जी की क्लास था, उसमें उन्होंने बोला था कि भगवान भारत में ही क्यों आए, भारत में ऐसा वातावरण है कि हम गर्मी में भी जी सकते हैं और ठंडी में भी जी सकते हैं, बाहर विदेशों में ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ क्या है, फैन नहीं है तो हम होता है ना हाथे फैन वो भी लगा के जी सकते हैं, पर विदेश में ये चांस ही नहीं है। हर चीजों से भारत सुसज्ज है, इसलिए बाबा भारत में ही आते हैं। ठंडी गर्मी ये वो जो भी है इसमें हम रह सकते हैं। अभी बाहर विदेश में जैसा थोड़े कि 5-6 महीने तक आइस के नीचे ही रहना है, ऐसा भी नहीं है। और गर्मी है इसका मतलब ये नहीं कि हम गर्मी में बिल्कुल रह ही नहीं सकते, पेड़ पौधे है, हम पेड़ पौधे के नीचे जाके बैठ सकते हैं, शीतलता वहां से मिल सकता है, पर विदेश में ये सब चीजें है ही नहीं। तो हमें बाबा ने क्या है, साधनों के ऊपर अटैच नहीं होना है, साधन के ऊपर लगाव नहीं रखना है, ये हमको साथ देने वाला नहीं है, तो ये छूट जाएगा। तो इसको कैसे यूज करना है हमको, साधन को बाबा ने बोला है कि तुम्हारे ऊपर ये अटैच ना हो जाए, तुमको साधना में डिस्टर्ब न हो। तो इसके लिए हमको निस्वार्थ होके ही यूज करना है, निस्वार्थ होके। और दूसरी चीज है, दूसरा चीज होता है कि एक शब्द जो मुझे याद नहीं आ रहा है, निस्वार्थ होके यूज करना है और ट्रस्टी होके यूज करना है, अपनी स्वराज्य अधिकारी की सीट में स्थित होके करना है। और हमको क्या है, जो भी चीजें है, मोबाइल है, कंप्यूटर से जो भी है, इनों को यूज करते समय हमको क्या है, गलत काम नहीं करना है। इसकी कुछ दूसरा शब्द था जो मुझे याद नहीं आ रहा है, गलत काम नहीं करना है हमको, इसमें से सेवा की ही हिसाब से करना है, सेवा के भाव से, जो बाबा ने जो सेवा दिए है उस सेवा को ही आगे बढ़ाने के हिसाब से करना है, इसको मिसयूज नहीं करना है। सेवा के लिए ही करते हैं, पर किसको क्या पता कौन क्या कर रहा है, चार दीवार के अंदर कौन क्या करता है क्या पता तो ये हमको क्या है, मिसयूज नहीं करना है। तो हम इससे, इसकी लगाव से हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु अमानत समझ के अगर इसको यूज करेंगे तो हम गलत काम तो नहीं करेंगे, तो गलत काम नहीं करेंगे तो उसका लगाव ऐसा नहीं होगा, उससे भी हम छूट सकते हैं। और छठा नंबर में है कि ज्ञान योग से ही लगाव होता है, ज्ञान योग से लगाव हुए तो अच्छी बात है, पर क्या है, ज्ञान योग से लगाव ऐसा होता है कि गलत टाइप से होता है। जैसे कोई 2 बजे से उठ के आया योग करने, अभी रात में सोया 11 बजे, 2 बजे ही उठ के आया, तो वो योग तो कर नहीं पाएगा, लगाव तो है, योग तो करना है, और आके बाबा कमरा में सोने लग जाएगा और फिर सबको डिस्टर्ब होगा। 2 बजे ही उठेंगे, 2 बजे उठ के तैयारी तो हमको करना ही पड़ता है, वैसे हम यहाँ नहीं आ सकते, 2 बजे से उठना तो पड़ता ही पड़ता है, पर क्या है, अपने शरीर भी साथ देना चाहिए। योग की लगन तो लगी, पर वो योग की लगन अगर लगाई है तो फिर उससे गलती नहीं होगा, दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे उससे, ऐसा योग की लगाव हो, उसमें क्या होगा, दूसरों को कोई तकलीफ नहीं हो, तो ऐसा लगाव होना अलग बात है। बाकी क्या होता है, योग में तो आ ही गया पर योग नहीं लग रहा है, ज्ञान की तो नशा तो हम दिखा रहे, पर उसमें ज्ञान का तो कोई वो एक सार तो है ही नहीं। ज्ञान तो बहुत है, हम ज्ञान बहुत सुना रहे लोगों को, पर लोगों को उससे कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जिसको बोलते कुक्कड़ ज्ञानी, ज्ञान तो दे रहा है पर उसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी ये ज्ञान और योग जो है, इसमें जो हम कर रहे हैं ज्ञान की नशा योग की नशा जो है ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। जैसे हमारी डॉक्टर सचिन जी को ज्ञान की नशा बहुत ऊंचा था, 3-4 साल पहले से मैं उनकी जो स्टेज में आया था तब उन्होंने बहुत नशा था, अति नशा था, ऊंचा नशा था। पर मेरे में क्या था, मैं किसी से झूठ नहीं बोलता क्योंकि मेरे में उतना नशा नहीं था, क्योंकि मैं 13 साल जो हुआ ना मेरा, मैं शारीरिक रीति से बहुत कष्ट झेलाया मैंने। अभी मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, मतलब ज्ञान योग में नशा हो भी जाए तो भी मैं उतना नहीं कर सकता था, तो मैं उनके साथ में इसलिए भी छूट गया, उनसे मैं थोड़ा सा दूर रहा, क्योंकि उनकी बहुत ऊंचा नशा था। तो आज वो ऊंची नशा आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, क्लास कितनी अच्छा चला रहे हैं। अगर वो नशा नहीं होता तो आज उन्हें इतना आगे नहीं जाते थे। अभी भी नशा है, अभी कोई कम नहीं है, पर उनमें पहले जो था बहुत ऊंचा नशा था, अभी भी है। तो ये उनका क्या है, उनका ये नशा जो है पॉजिटिवता की ओर है, बिल्कुल क्या है, इस ज्ञान को उन्होंने अच्छे से इस ज्ञान को उन्होंने तौले है, इस ज्ञान को बहुत विस्तार कर पाए है। ऐसे सभी को नहीं होता, ज्ञान तो कर रहे हैं, योग तो कर रहे, पर उसमें सभी सक्सेस नहीं हो पाते। तो इसमें क्या है, ज्ञान योग की नशा होना चाहिए, और ज्ञान योग की जो नशा है, लगाव है, इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ज्ञान योग की जो पथ पर चल रहे हैं उसमें लगाव न हो, मतलब उल्टा तरह का लगाव न हो, इसके लिए टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा, किस तरह से अपने को चलाना है। जो सामान्य वाला जो आत्मा है उसको जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसको उस ज्ञान में रुचि है या नहीं है, वो भी समझ करके सोच करके ही अपने को ज्ञान देना होगा। और योग की भी टाइम टेबल अपने को सही करना है, और योग ऐसा लगे जो सचमुच योग लगे, ऐसा नहीं कि आके तो बैठ गया पर बुद्धि नहीं जा रहा है। अभी यहाँ पर ऐसा है आप लोग कोई भी कम नहीं है, सबसे आप लोग सब ऊंची स्टेज वाले हैं। आप लोग क्या है, बहुत समय से है, और बहुत समय से बाबा की जो ज्ञान योग कर रहे हैं, तो ये कोई नीचे की स्टेज नहीं है, ऊंचा स्टेज है। यहाँ पर जो है आप लोगों के सम्मुख में जो ज्ञान की चर्चा करना जो मिल रहा है ये सौभाग्य है। इसमें क्या होगा, जो ज्ञान सुनाया जाएगा तो उससे क्या होगा, आप लोग का जो फीडबैक मिलेगा हमें, तो हम अपनी लाइफ को ही परिवर्तन कर पाएंगे, फिर हम अपनी इसको अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान योग की जो लगाव होना चाहिए, पर उसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं है जो हम ज्ञान योग को उल्टी रीति से ले रहे हो, ऐसा ना हो। तो ये सभी चीजों का हमको चेकिंग करना है, और इन सब चीजों से डिटैच होने के लिए बाबा ने हमें एक ही चीज बताई है कि बच्चे एक बाप दूसरा न कोई, और तुम जो भी करो अपने को निमित्त समझ के करो, और क्या कर रहे हो सच गलत क्या है उसको जजमेंट पावर भी तुम्हारे में होना चाहिए। अगर बुद्धि में है ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी कर दिया और बोला कि मैं तो बाबा की याद में कर रहा था, मेरे से तो हो गई है, तो निमित्त बन के तो किया ना, ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारे में पूरा ज्ञान की समझ नहीं होगा तो हमें ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप के नाम में बदनाम हो। तो निमित्त भाव जो है ये ऊंची स्टेज है, तो निमित्त भाव में जो चीज हम करेंगे इससे हमें नुकसानी नहीं है, पर इसको भी समझना पड़ेगा। इसको अगर नहीं समझेंगे, और वैसे ही निमित्त भाव में मैंने किया है, बाबा ने बोला था मैंने कर दिया, तो डिसर्विस की भी जो बात ही होगी उसमें भी बाबा की ही नाम आगे लाएंगे, तो ये तो नहीं चलेगा। बाकी अपने को ज्ञान योग से भरपूर होके समझदार होकर के ही हर कार्य को करना होगा, तो जाकर के हम बाप दादा का ये जो वरदान है इसको प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बाबा ने बोले है कि सर्व लगाव से मुक्त होना है। और लगाव क्या क्या है, हमने 6 पॉइंट मुख्य गिने हैं, उसके अंदर में सभी चीजें आई जाएंगे। तो सबसे पहले है कि स्वयं और स्वयं की जो भी शरीर की संबंधियां है, इनों से हमारी लगाव होता है, इससे मुक्त होना है। दूसरा है धन से रिलेटेड लगाव, धन से रिलेटेड लगाव में भी कई सारी चीज आ जाता है, इन सब चीजों से हमको मुक्त होना है। और तीसरे नंबर में है पद प्रतिष्ठा का जो लगाव होता है, उसमें भी अपने को फंसना नहीं है, उससे भी मुक्त होना है। और चौथे नंबर में है कि सेवा में लगाव, सेवा की लगाव भी अपने को बहुत नुकसानी पहुंचाता है, तो सेवा से भी डिटैच होके करना है, निमित्त बन करके करना है। और पांच नंबर में है कि साधन स्रोत स्थूल जो भौतिक पदार्थ और वैज्ञानिक लोगों ने जो आविष्कार किए हैं, इन चीजों से भी डिटैच होना है। और छठा नंबर में है ज्ञान योग, ये भी इसकी लगाव से भी मुक्त होना है, मतलब उल्टा नशा नहीं चढ़ाना है ज्ञान योग में, कि शुद्ध नशा शुद्ध अभिमान होना चाहिए। अगर ज्ञान योग की लगाव इसको हम नेगेटिव रीति से बुझेंगे तो दूसरा ही होगा, और पॉजिटिव रीति से अगर ज्ञान योग में नशा चढ़ता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, दुनिया को बदल सकता है। तो ज्ञान योग की नशा, ज्ञान योग की लगाव हमेशा क्या है, पॉजिटिवता की ओर होना चाहिए, नेगेटिवता की ओर नहीं जाना चाहिए। तो ये सभी चीजों को हम अगर अपनी जिंदगी में हम इसको लाते हैं तो बाप दादा का जो ये वरदान है सर्व लगाव मुक्त, इसको हम अपने में धारण कर सकते हैं। तो बाप दादा ने बोला है कि ये सर्व लगाव से मुक्त होने की साधन यही है कि एक बाप दूसरा न कोई, दूसरा कोई भी नहीं है, एक बाप है, उसी में तुम्हारी संसार है, सब कुछ तुम्हारी इसमें ही समाया हुआ है। तो अभी तुमको करना है निमित्त होके सेवा करना है, निमित्त ओनली ट्रस्टी, घर परिवार जो चल रहा है तुम निमित्त हो, जो चलना था वो चल रहा है। अभी तुम्हारे घर में बच्चे पैदा है, बच्चा है, माँ बाप है, जो भी है, तो क्या है, हर एक ने अपने अपने नसीबी लेके आए है, हर एक अपनी अपनी ही अपनी अपनी तकदीर से ही जीते है, कोई किसी को पालता नहीं है, कोई किसी को पालता है नहीं पालता है। जैसे ही बच्चा बच्चे जन्म लेता है वो अपनी नसीब लेके आता है। मुझे भी हमेशा यही लगता था कि मेरा माँ बाप जो है वो बीमार पड़ जाए तो हम कैसे चलेंगे, कैसे जिएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। किसी का माँ बाप जो होते हैं, बच्चे जन्म लेते ही माँ बाप चले जाते हैं, तो वो बच्चे क्या मर जाते, नहीं मरते हैं, तो वो भी किसी न किसी तरह से जीता ही है, पलता ही है, बढ़ता ही है। तो निमित्त होकर के ही हमको ये सब चीज को चलाना है, ये नहीं कि मैं नहीं हूँ तो क्या होगा, मैं नहीं हूँ तो भी बहुत कुछ हो सकता है। आज मैं जिस सेवा स्थान में हूँ, मैं वहाँ नहीं था तो भी चल रहा था, और मैं हूँ चल रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो भी चली जाएगा, क्योंकि ये तो चलना ही है, कोई किसी के बिगर कुछ रुकता नहीं है, इसलिए निमित्त भाव से ही हमको सेवा करना है। तो निमित्त भाव अगर नहीं होगा तो हम इन सभी चीजों की लगाव से मुक्त नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति।